पढ़ेंगे जो समाधियां वृंदावन में श्रील महावीर स्वामी के द्वारा लिखित है। मधु पंडित गोस्वामी वचनाभ भगवान कृष्ण के जो प्रपौत्र, इन्होंने मूल गोपीनाथ विग्रह को वृंदावन में स्थापित किया था 5000 साल से भी पहले। आप जानते हैं भगवान कृष्ण के प्रपौत्र यानी पुत्र के पुत्र के पुत्र वचनाभ ने जो मूल गोपीनाथ विग्रह हैं उनकी स्थापना की थी, और 500 साल के लगभग पूर्व परमानंद भट्टाचार्य ने इस विग्रह का खोजा था जमीन के अंदर बंसीवट में यमुना के तट पर। परमानंद भट्टाचार्य ने खोजा। मधु पंडित गोस्वामी जो कि श्री गदाधर पंडित के शिष्य थे, इन्होंने इस गोपीनाथ विग्रह का पूजन किया। भक्ति रत्नाकर में कहा गया है कि श्री गोपीनाथ जी जो कि कृपा के सागर हैं, हमेशा क्रीड़ा करते हैं यमुना के तट पर बंसी बट में। उनके शरीर का जो सौंदर्य है वो किसी के भी मन को चुरा लेता है जो उन्हें दर्शन करे। गोपीनाथ जी के सुंदर शरीर की का जो माधुर्य है वो जब हृदय में प्रवेश करता है तो तुरंत ही जो दावनल संसार दावनल की जो अग्नि है वो शांत हो जाती है। अभी गोपीनाथ विग्रह जो मूल हैं वो जयपुर राजस्थान में निवास करते हैं। मधु पंडित गोस्वामी ने श्रीनिवासाचार्य पर कृपा की। विद गोपीनाथ हैज गार्लैंड बिफोर श्रीनिवास नरोत्तम एंड श्यामानंदा टुक द बुलक कार्ट ऑफ गोस्वामी ग्रंथास फ्रॉम वृंदावन। अच्छा, तो जब श्रीनिवास और नरोत्तम और श्यामानंद ने एक बैलगाड़ी में गोस्वामियों के ग्रंथ लिए थे वृंदावन से कहां जाने के लिए, गौड़ देश में जाने के लिए, तो मधु पंडित गोस्वामी ने श्रीनिवासाचार्य पर कृपा की थी। कैसे, गोपीनाथ जी की जो माला है वो उनके गले में पहनाई, और आप जानते हैं कि इसके ही प्रभाव से जो मधु पंडित गोस्वामी ने जो माला पहनाई थी गोपीनाथ जी की, इसी के प्रभाव से श्रीनिवासाचार्य बहुत बड़े संकट में पड़ गए थे लेकिन उस संकट से छोटे। तो आपको पता है कि दीर्घ विष्णुपुर में जो गोस्वामी के ग्रंथ हैं वो सब लूट लिए गए थे, और श्रीनिवासाचार्य ने ही फिर किसी प्रकार से उनका पता लगाया और वहां के राजा वीर हम्मीर को अपना शिष्य बनाया, और फिर दीर्घ विष्णुपुर में पूरे नगर में वैष्णव धर्म का प्रचार किया। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मधु पंडित गोस्वामी के जो गोपीनाथ विग्रह हैं उनके फूलों की माला चूंकि श्रीनिवासाचार्य के गले में पहनाई गई थी, इसलिए श्रीनिवासाचार्य इतना बड़ा कार्य कर सके। गोलोक वृंदावन में मधु पंडित गोस्वामी मंडली सखी के रूप में सेवा करते हैं और चंपकलता सखी के दल में हैं। आप जानते हैं 8 सखियां अष्ट सखियां हैं जो राधा कृष्ण की, उनमें एक चंपकलता है, और सखियों की और भी सेविकाएं दासियां हैं, तो उनमें से एक ये हैं मंडली सखी नाम की दासी हैं। मधु पंडित गोस्वामी की जो समाधि है ये राधा गोपीनाथ मंदिर जो वृंदावन में है उसके प्रवेश के दाहिनी तरफ है। शिला मधु पंडित गोस्वामी प्रभाव तिथि महामहोत्सव की। अभी जाह्नवा माता के बारे में हम पढ़ेंगे। श्री नित्यानंद की 2 पत्नियां श्री वसुधा और श्री जाह्नवा देवी, ये दोनों बलराम की जो नित्य भार्याएं हैं बारुणी और रेवती, इनके ही विस्तार हैं। आप समझ रहे हैं, वारुणी का विस्तार है वसुधा और रेवती का विस्तार है जाह्नवा देवी। आज जाह्नवा देवी का आविर्भाव है जो कि रेवती की अवतार है। तो पंच तत्व की तिरुभाव के बाद भगवान चैतन्य के जो बहुत से नित्य पार्षद हैं उनका भी तिरुभाव हो गया। तो फिर बहुत बड़ा संकीर्तन उत्सव मनाया गया था खेतरी में गौर पूर्णिमा के दिवस। हजारों भगवान चैतन्य के जो अनुयायी थे जैसे नरोत्तम, श्यामानंद, श्रीनिवास, वृंदावन दास, मुरारी चैतन्य परमेश्वर और मीन केतन राम, इन्होंने सबसे पहले इस खेतरी संकीर्तन महोत्सव में भाग लिया था। इन्होंने गौरांग का जो आविर्भाव है उसको मनाया था बहुत ही भव्य कीर्तन के साथ और बड़ा ही अद्भुत नृत्य किया था और बड़ा ही स्वादिष्ट प्रसाद वितरण किया था। सुंदर जो है विग्रहों की स्थापना हुई थी जिनमें 6 सेट थे विग्रहों के। जाह्नवा माता ने बड़ा ही अद्भुत प्रसाद बनाया था उस समय और स्वयं ही वैष्णव को परोसा था। आप समझ रहे हैं, जाह्नवा माता ने स्वयं ही अपने हाथ से प्रसाद बनाया था, बनाया मतलब पकाया, रंधन किया था और वैष्णवों को परोसा था। नरोत्तम दास ठाकुर के प्रेम नाम कीर्तन के समय श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु और उनके जो पार्षद हैं अचानक ही प्रकट हो गए थे। सब लोग चमत्कृत हुए, कीर्तन के बीच में प्रकट हो गए थे। माँ जाह्नवा जिनको कि भक्तों ने प्यार से नाम दिया था माँ जाह्नवा, इन्होंने संपूर्ण गौर मंडल और ब्रज मंडल में भ्रमण किया और जहां भी वे गईं गौर भक्तों ने प्रसन्नता पूर्वक उनका स्वागत किया, उनकी सेवा की। और ये नित्यानंद स्वरूपिणी के नाम से जानी जाती थी। जाह्नवा देवी ने प्रेम भक्ति की बाढ़ ला दी और उन्होंने बहुत से नास्तिकों का उद्धार किया, पापियों का उद्धार किया अपने करुण प्रचार के द्वारा। श्रील भक्ति मनोज ठाकुर प्रार्थना करते हैं जाह्नवा माता की अपने कल्याण कल्प तरु इस ग्रंथ में। तो क्या कहते हैं, हे जाह्नवा देवी, अपने दिव्य गुणों की शक्ति के द्वारा अपने सेवकों पर आप दया कीजिए और इस अज्ञान को दूर कीजिए जो मुझे कष्ट दे रहा है और मुझे इस भाव बंधन से निकालिए। मैं आपके चरणों की शरण ले रहा हूं, आप नित्यानंद की शक्ति, भगवान नित्यानंद की दिव्य शक्ति साक्षात है और आप कृष्ण भक्ति की गुरु हैं, मेरे ऊपर कृपा कीजिए और अपने चरण कमलों की छाया प्रदान कीजिए जो कि आपके चरण कमल कैसे हैं, कल्प वृक्ष के समान हैं। आपने असंख्य महा पापियों का उद्धार किया है तो कृपया इसी प्रकार मेरा उद्धार कर दीजिए। आज मैं आपके आपकी कृपा की याचना करता हूं, ये जो नीच पापी है आपके पवित्र चरणों के नीचे गिरा हुआ है। ये प्रार्थना किसने की, भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर कौन से ग्रंथ में करते हैं प्रार्थना, उनका एक ग्रंथ है जिसमें उन्होंने ये प्रार्थना लिखी है माँ जाह्नवा के लिए, कल्याण कल्प तरु। ये कहा जाता है कि श्री जाह्नवा देवी ने इस संसार को छोड़ा था कैसे, वृंदावन में जो गोपीनाथ का विग्रह है उसमें ही वो समा गई, गोपीनाथ के विग्रह में समा गई, शरीर नहीं छोड़ा उन्होंने। माँ जाह्नवा ने अपना शरीर नहीं छोड़ा, उनकी कोई समाधि नहीं है, गोपीनाथ जी के विग्रह में समा गई। तो जाह्नवा माता आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। अब सीता महारानी का आविर्भाव है। सीता माता के बारे में कुछ चर्चा हम करेंगे और फिर आप लोग भी जो है कुछ कर सकते हैं अगर समय हुआ तो, क्योंकि हमें 9 बजे ठीक समाप्त करना है। तो कुछ तथ्य हैं जो पद्म प्राण से हमने लिए थे, तो उसमें सीता जी के बारे में कुछ बातें हैं। पहली बात तो यह है कि जब सीता जी का विवाह हुआ था तो आप जानते हैं सीता जी की अवस्था कितने वर्ष की थी, 6 वर्ष की। जब सीता जी 6 वर्ष की थी तो उनका विवाह हुआ था, और भगवान राम उस समय 15 वर्ष के थे। तो भगवान राम 15 वर्ष के थे, बहुत छोटी अवस्था थी राम की। जब विश्वामित्र जी उनको ले गए उन राक्षसों का वध करने के लिए, जहां पर विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे, तो सीता जी की अवस्था 6 वर्ष की थी। लेकिन 6 वर्ष में ही महाराज जनक को चिंता हुई। कन्या जो है अपने पिता को चिंता पैदा करती है जैसे ही वो विवाह के योग्य हो जाए। तो यहां पर आयु की बात नहीं है कि कितने वर्ष की है कन्या, कोई कन्या जो है थोड़ी अवस्था में ही विवाह के योग्य हो जाती है। तो इसी प्रकार की सीता देवी हैं, ये दिव्य कन्या है। आप जानते हैं कि इनकी उत्पत्ति पृथ्वी से हुई थी। सीता शीर समुत्पन्ना, शीर कहते हैं हल्की नोक को। जब जनक महाराज जमीन को जोत रहे थे, एक विशेष प्रकार का यज्ञ था जिसको करने के लिए जनक महाराज उस यज्ञ भूमि को हल से जोत रहे थे, तो हल आप जानते हैं कि नीचे उसकी नोक चली जाती है, और जैसे ही वो हल खींचा जाता है तो नीचे की मिट्टी ऊपर आती है, है ना। तो जैसे हल की नोक से नीचे की मिट्टी ऊपर आई तो एक दिव्य कन्या उस मिट्टी से निकली, तो वो सीता जी हैं। और जैसे ही कन्या जो है जनक महाराज के महल में आई तो बहुत जल्दी ही चंद्रमा की कला के समान बढ़ने लगी। तो कुछ ऐसी कन्याएं होती हैं कि जो चंद्रमा की कला के समान बढ़ती हैं, और चंद्रमा की कला आप जानते हैं कैसे बढ़ती है। अमावस्या के दिन चंद्रमा बिल्कुल गायब रहता है, लेकिन 15 दिन में ही कलाएं बढ़ते बढ़ते पूर्ण चंद्रमा हो जाता है, 15 दिन में ही पूर्ण हो जाता है, है ना। तो उसी प्रकार से जो दिव्य कन्याएं हैं ये बड़ी होती हैं। तो 6 वर्ष की जब सीता थी तो उसी समय ही जनक महाराज को चिंता हो गई कि विवाह कैसे होगा। फिर कुछ बातें हैं, एक धोबी की बात आती है जिसके कारण सीता जी का वनवास हुआ था। तो ये जो धोबी था ये पूर्व जन्म एक तोता था, जिस समय सीता जी छोटी थी तो ये जो धोबी था ये तोते के रूप में अपनी मैना के साथ रहता था वाल्मीकि मुनि के आश्रम में। वाल्मीकि मुनि उस समय रामायण की रचना कर चुके थे और अपने शिष्यों को पढ़ाते थे, रामायण पढ़ाते थे। ये रामायण आप जानते हैं आदि काव्य कहलाता है। और एक बार गोपी प्राणधन प्रभु, उन्होंने भागवत प्रवचन दिया था तो बताया था कि 3 प्रकार का साहित्य है, एक तो वेद है और दूसरा पुराण है और तीसरा काव्य है। तो वेद तो जो है ना मतलब सनातन है, वेद तो सनातन है, अनादि है, वेदों का कोई आदि नहीं है, या वेद भगवान के श्वास से उत्पन्न हुए हैं। लेकिन जो काव्य है ये कवियों के द्वारा रचित होता है। तो जिनमें कि सबसे पहला जो काव्य है ये रामायण है, और सबसे पहले कवि कौन है, वाल्मीकि जी। इसलिए वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है और रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। तो उसमें बता रहे थे गोपी प्राणधन प्रभु कि जो वेद हैं उनकी भाषा दूसरी प्रकार की है, और पुराणों की भाषा दूसरी प्रकार की है, और काव्य की भाषा दूसरी प्रकार की है। वेदों की भाषा कैसी है, आदेश कि ये करो ये करो, और नहीं तो ये कष्ट मिलेगा, ये परिणाम है, ये खराब परिणाम है। तो वेदों का जो है ना केवल आदेश होता है, आदेश। कठोर आदेश कि पालन करना ही है, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। वेदों किस प्रकार की भाषा है, तो कुछ ब्राह्मण हैं जो कि वेदों का अध्ययन करते हैं, उनको ये पसंद है। और दूसरे ग्रंथ है पुराण। पुराणों की भाषा कैसी है, पुराणों की भाषा है मित्र की तरह है। जैसे एक मित्र समझाता है तो आदेश नहीं देता है, बल्कि वो सुझाव देता है, सलाह देता है, ये करो तो इससे ये फल मिलेगा, ये अच्छा परिणाम होगा। और फिर कई प्रकार की कथाएं पुराणों में होती हैं जिनसे प्रेरणा मिलती है कि हाँ, इस प्रकार से काम करने से, इस प्रकार का आचरण करने से अच्छा परिणाम होता है, या जो गलत काम होते हैं तो उनको करने से बुरा परिणाम होता है। तो वो सब जो है ना पुराणों की भाषा है, कि जो मित्र की तरह समझाते हैं। लेकिन जो काव्य है, काव्य बहुत ही कोमल भाषा होती है, काव्य की भाषा बहुत ही कोमल होती है और बहुत ही भावुकता उसमें होती है काव्य में, जिसमें कि बड़े ही कोमल भावों को जो है ना बड़े विस्तार से वर्णन किया जाता है ना। जैसे कि प्रेमिका है, वो प्रेमी के प्रति बड़े कोमल भाव रखती है, या प्रेमी प्रेमिका के प्रति बहुत कोमल भाव रखता है। तो काव्य की भाषा इस प्रकार की है, जो बहुत ही कोमल है। तो कुछ जो ब्राह्मण हैं जो पुराणों का अध्ययन करते हैं, उनको पुराणों की भाषा पसंद है, और कुछ ब्राह्मण हैं जो काव्य का अध्ययन करते हैं, है ना। तो जो रामायण है ये आदि काव्य कहलाता है। तो मैं बता रहा था कि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी और राम का चरित्र सब वर्णन कर दिया था, राम के जन्म के समय या राम के जन्म से पहले ही। तो ये जो तोता और मैना थे, ये वहां पर भी रामायण सीखते थे वाल्मीकि के आश्रम में, और आपस में भी चर्चा करते थे, तो सीताराम की चर्चा करते थे। लेकिन एक दिन ये वाल्मीकि जी के आश्रम से उड़ करके मिथिला के उपवन में आ गए, जहां सीता जी आती थी, उनका महल था और अपने सखियों के साथ सीता जी आती थी। तो ये जो तोता मैना थे, इन्हें कुछ पता नहीं कि सीता जी का उपवन है, और वो सीताराम की चर्चा कर रहे हैं। उनका जो ना दिन रात का ही काम था अपना, जो वृक्षों के फल खाना और सीताराम की चर्चा करना। तो जब सीताराम की चर्चा कर रहे थे तो सीता जी ने सुना, और सीता जी ने जब सुना तो उनको उत्सुकता हुई कि ये लोग कैसे चर्चा कर रहे हैं। तो उन्होंने सखियों से कहा कि किसी प्रकार से इनको पकड़ो, हमें तो इनसे कुछ बात करना है। तो उनकी सखियों ने प्रयास करके तोता मैना को पकड़ लिया, और सीता जी पूछती हैं कि तुम लोग जो है किसकी चर्चा कर रहे हो। तो वो जो तोता मैना है वो बताते हैं कि हम वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहे काफी समय तक, तो वो अपने शिष्यों को जो सीताराम का चरित्र सिखाते हैं तो वो हमने भी सुना है, तो हम लोग वही चर्चा करते हैं। तो सीता जी कहती हैं कि तुम लोग जिस सीता की चर्चा कर रहे हो वो मैं ही हूं। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, तो वो जो है सीता जी को प्रणाम करके और थोड़ा सा भयभीत होकर के वो जो है चुप हो गए। तो फिर सीता जी कहती हैं कि देखो, जब तक राम नहीं आते हैं, राम विवाह करके मुझे नहीं ले जाते हैं, तब तक तुम लोग जो है मुझे राम कथा सुनाओ, क्योंकि मुझे बहुत ही सुंदर और मुझे आनंद आता है राम कथा सुन करके, तुम लोग मुझे राम कथा सुनाते रहो। तो सीता जी की कोई गलती नहीं थी जब सीता जी ने इच्छा प्रकट की। लेकिन ये दोनों पक्षी बोले कि नहीं नहीं देखिए, हम लोग तो पक्षी हैं, हम लोग तो एक स्थान में ठहर नहीं सकते, बंद नहीं हो सकते, तो हम लोग तो जो है उड़ना पसंद करते हैं, एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान में जाना चाहते हैं। तो सीता जी कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम जा सकते हो, लेकिन जो मैना है इसको मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, इसको मैं अपने साथ रखूंगी, इसको अच्छा भोजन खिलाऊंगी और ये मुझे रामकथा सुनाती रहे। तो इस तरह से जो मैना ने जब मैना को जब पता चला इसको यहाँ पिंजड़े में बंद रहना पड़ेगा, तो वो बड़े कष्ट में पड़ गई, सीता जी को मना भी नहीं कर सकती थी, लेकिन इस बंधन के भय से वो राम का जो है ना नाम लेते हुए उसने शरीर त्याग दिया, और शरीर त्याग करके वो तो भगवान राम के धाम में चली गई, साकेत धाम में चली गई। तो मैना ने कोई गलती नहीं की, लेकिन जो तोता था वो अपनी पत्नी के विरह में बड़ा दुखी हुआ, और फिर सीता जी को उसने श्राप दिया, सीता जी पर गुस्सा हुआ और उसे श्राप दिया, जबकि उचित नहीं था, लेकिन सीता जी के लिए उसने बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग किया है। और उसने कहा, दुष्टे, तेरे कारण मेरी पत्नी का वियोग हुआ है, इसलिए आगे चल करके मैं कारण बनूंगा राम से वियोग जो तेरा होगा उसका कारण मैं बनूंगा। इस तरह से उस तोते ने श्राप दिया सीता जी को, तो मर करके ये तोता क्या बना, धोबी बना, अयोध्या का धोबी बना। धोबी नीच होता है, तो नीच धोबी बना, क्योंकि महापुरुष का अपराध किया, सीता जी महादेवी हैं तो उनका अपराध किया, इसलिए धोबी के रूप में से जन्म लिया। फिर आप लोग जानते हैं कि भगवान राम ने रावण का वध करके जब सीता को लाए अयोध्या में, तो फिर बाद में एक धोबी के कहने से ही सीता को वनवास हुआ, सीता का त्याग किया। तो ये वही धोबी था जिसने पहले सीता की निंदा की, तो धोबी बना, और अब इस बार उसने राम की निंदा की और क्या कहा अपनी पत्नी को कि मैं स्त्री लोभी राम नहीं हूं, मैं तुझे अपने घर में नहीं रखूंगा, जबकि उस स्त्री की कोई गलती नहीं थी, वो स्त्री अपने पिता के घर गई थी और पिता के घर जो है 4 दिन ठहर गई, तो उसके पिता जो ना उसको लेकर के आए थे अपने दामाद को देने के लिए, लेकिन वो बहुत जोर जोर से चिल्ला करके उसने जब ऐसी बातें कही जो कि भगवान राम को बहुत ही कष्टकारक हुई, बहुत ही कष्ट हुआ भगवान राम को, और उसमें उसे भगवान दंड देना चाहते थे लेकिन दंड नहीं दिया इस धोबी को, और सीता का त्याग कर दिया। लेकिन चूंकि इसने सीता की निंदा की थी, फिर राम की निंदा की थी, इस कारण से इसका और ज्यादा पतन हुआ और ये धोबी फिर से धोबी बना। कहां पर? मथुरा में। और किसका धोबी बना? कंस का। कंस का धोबी बना, दुष्ट। और फिर आपको पता है इसने कृष्ण का अपराध किया, जब भगवान कृष्ण मथुरा को देखने के लिए आए तो रास्ते में धोबी मिला और भगवान बड़े प्यार से बात कर रहे थे कि भाई हमें कुछ कपड़े दे दो, हमें कल राजा की सभा में जाना है, और हम लोग गांव के वासी हैं, राजा ने हमको बुलाया है, तो हमें राजा के कुछ कपड़े दे दो तो हम पहन करके जाएंगे, तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण होगा। लेकिन बड़ा दुष्ट था, इसलिए फिर से वो जो ना उल्टी बात बोला, ये कपड़े कभी देखे हैं तुमने, गांव के आदमी इस तरह से बोल करके, और कहता है कि यहाँ राजा के जो सेवक हैं या पुलिस हैं ये गिरफ्तार कर लेगी, तुमको बंद करवा देंगे, जेल में बंद करवा देंगे। जब उल्टा सीधा बोल रहा था तो भगवान ने फिर इसको दंड दिया और तीनों जन्मों के अपराध से मुक्त किया। कैसे? आपको पता है कैसे दंड दिया भगवान कृष्ण ने? एक ऐसे हाथ मार दिया, ऐसे 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 करके, और जैसे हाथ मारा उसे उसका सिर कट के जमीन में गिर पड़ा। तो इस तरह से जो है तीन जन्म के अपराध से मुक्त हुआ। तो एक तो ये चर्चा है इस तोते की, जो कि तीन जन्मों में इसने अपराध किया था। जिसके बाद फिर एक बात और भी सीता जी के संबंध में है कि ये पूर्व जन्म में वेदवती नाम की कन्या थी, जो राजा कुशध्वज की कन्या थी, कुशध्वज नाम के राजा की कन्या थी, वेदवती नाम था, और धर्मध्वज इनके भाई थे जिनकी कन्या थी सत्यवती, और ये दोनों ही दिव्य कन्याएं हैं। सत्यवती आप जानते हैं तुलसी महारानी है, सत्यवती हम बोलते हैं सत्यवत्या नमो नमः वृंदाय तुलसी देवी है, तो सत्यवती जो है वो फिर तपस्या करती हैं और फिर जो है ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करती हैं, फिर बाद में शंखचूड़ की पत्नी बनती हैं या कहीं कहीं जलंधर की पत्नी बताया गया है, और फिर भगवान उसके पतिव्रत को भंग करते हैं, फिर बाद में जो है सत्यवती भगवान को साथ देती हैं शालिग्राम बनने के लिए, और भगवान उनको वरदान देते हैं कि तुम तुलसी बनो, तुलसी का वृक्ष बनो, तो वो सत्यवती है। और ये धर्मध्वज की कन्या थी सत्यवती और कुशध्वज की कन्या थी वेदवती। कुशध्वज की कन्या वेदवती को देख करके बहुत से राजा लोग चाहते थे विवाह करना, लेकिन कुशध्वज की इच्छा थी कि नहीं, मैं अपनी कन्या का विवाह तो भगवान से करूंगा, भगवान से करूंगा, भगवान विष्णु से करूंगा। तो फिर जितने राजा थे उन्होंने मिलकर के कुशध्वज को सोते हुए मार डाला, उनका सिर काट दिया। इसी जो है ईर्ष्या के कारण कि किसी राजा से विवाह नहीं कर रहे हैं अपनी कन्या का। लेकिन वेदवती ने अपने पिता के इस वचन को मान करके कि पिता की इच्छा पूरी करनी है, इसलिए भगवान विष्णु के अलावा और किसी से विवाह नहीं करेंगी, इसलिए वो वन में जाकर के कठोर तपस्या करने लगी। फिर ब्रजनंदन प्रभु जानते हैं वाल्मीकि रामायण से कि रावण उस समय पुष्पगमान से जो है भ्रमण कर रहा था और जहां जहां सुंदर स्त्रियों को देखता था, जो विवाहिता हूं या अविवाहिता हूं, कोई भी सुंदर स्त्री मिले तो उसका हरण कर लेता था, बलपूर्वक हरण करता था रावण। तो जब उसने वन में तपस्या करते हुए इस सुंदर स्त्री को देखा तो उसने अपने पुष्पगमान को उतार करके और परिचय पूछा कि तुम कौन हो, तुम किसकी कन्या हो और यहां तपस्या क्यों कर रही हो। तो वेदवती ने अपना परिचय दिया और अपने पिता की इच्छा बताई और अपने पिता की इच्छा के अनुसार उसने भी निश्चय किया है कि भगवान विष्णु के अलावा और किसी को पति नहीं बनाएगी। तो उस समय रावण, जैसे कि आप जानते हैं, बहुत दुराचारी था, तो वो जो है मतलब फिर बोलने लगा कि तुम क्यों अपने शरीर को कष्ट दे रही हो, ये तुम्हारा शरीर तो जो है भोगने के लिए है, तपस्या करने के लिए नहीं है, तुम मेरी पत्नी बनो, मेरे समान कोई ऐश्वर्यशाली नहीं है। इस तरह से बोल करके वेदवती को जब उसने लुभाया तो वेदवती ने साफ मना कर दिया कि विष्णु के अलावा और मैं किसी को अपना पति नहीं बनाऊंगी। तो फिर रावण कहता है कि देखो, तुम किसी को पति बनाना चाहती हो या नहीं बनाना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना पत्नी बनाना चाहता हूं तो मैं बना लूंगा, मेरे पास शक्ति है। और उसने वेदवती के केसों को पकड़ लिया। जैसे वेदवती केसों को पकड़ा, वेदवती ने तुरंत ही अपनी उंगलियों से अपने केस काट लिए, क्योंकि उनके पास दिव्य शक्ति थी, तो उंगलियों ने ही चाकू का काम किया और केस काट दिए। और रावण के हाथ में क्या रहा, उसके केस रहे। और वेदवती जो है बहुत ही गुस्सा होकर के रावण को शाप देती है, कहती है कि दुष्ट, चूंकि तूने मुझे अपवित्र करने का प्रयास किया है, इसलिए मैं शाप देती हूं कि तेरी मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। तो फिर वही वेदवती ने उसी समय योग अग्नि से अपने शरीर को जला दिया रावण के सामने ही। और फिर ये मिथिला के उस क्षेत्र में उत्पन्न हुई जनक जी की कन्या के रूप में, है ना। तो रावण, वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि एक समय रावण ने भी विचार किया था कि ये वही वेदवती हैं जिन्होंने मुझे साथ दिया था, और ये बहुत ही पूजनीय हैं, सम्माननीय हैं, जिनका मैंने अनादर किया था, और अब ये जो है ना मेरी मृत्यु का कारण बनेंगी। इस तरह से रावण को याद आता है कि एक दिन ऐसा था जबकि मैंने अपराध किया था वेदवती का। फिर सीता जी जनक की पुत्री हैं, इसलिए इनको जानकी कहा जाता है। लेकिन आप जानते हैं जनक नाम के राजा बहुत से हुए हैं, जनक नाम के राजा बहुत से हुए हैं। महाराज निमि के वंश में जनक हुए। निमि महाराज का चूंकि शरीर छूट गया था और कोई संतान नहीं थी, तो ब्राह्मणों ने उनके शरीर का मंथन किया, तो उनके शरीर के मंथन से, उनके मृत शरीर के मंथन से एक बालक जो उत्पन्न हुआ, तो उसका नाम जनक रखा गया है। जन्मना जनकः स्वभूत, और वैदेहस्तु विदेहजा, विदेह जनक निमि को विदेह कहा जाता है क्योंकि वो शरीर छोड़ चुके थे और फिर अपने शरीर में वापस नहीं आना चाहते थे, इसलिए देवताओं ने फिर व्यवस्था की कि वे सब प्राणियों के पलकों में निवास करेंगे। तो निमि को विदेह कहा जाता है, और विदेह से उत्पन्न होने के कारण, विदेह के पुत्र होने के कारण उस बालक को क्या कहा गया, वैदेह है। तो वैदेह नाम पड़ा उस बालक का और जनक नाम पड़ा। जनक नाम क्यों पड़ा? क्योंकि फिर निमि की वंश का जनक वही हुआ। जनक माने जानते क्या है? पिता, है ना। क्योंकि निमि का वंश नष्ट हो गया था तो निमि के वंश का जो है ना जनक यानी जन्म देने वाला वो बालक था, इसलिए वो जो है जनक कहलाया और वैदेह कहलाया। और उसकी फिर वंश में जितने भी राजा हुए हैं वे सब जनक कहलाए। तो संस्कृत की भाषा के अनुसार जो है जनक का पुत्र भी जनक ही कहलाता है, वैदेह का पुत्र भी वैदेह कहलाता है। तो ये सब जो है ना राजा जनक हुए हैं। और श्रीमद् भागवत में ये सब वंश परंपरा नवे स्कंद में है कि उस जनक से जो ना
फिर और दूसरे जनक हुए उनका नाम क्या था, तीसरे जनक का नाम क्या था।
जो कि उस वंश में जितने राजा सब जनक कहलाते हैं। तो जनक को तो उपाधि भी आप कह सकते हैं कि जनक तो उपाधि है या वैदेह भी उपाधि है। लेकिन उनका नाम वास्तव में क्या था जो सीता के पिता थे? शिरध्वज। शिरध्वज नाम के राजा थे। और आप जानते हैं भगवान कृष्ण के समय में भी एक जनक थे उन्हीं के वंश में। कृष्ण के समय में भी एक जनक थे मिथिला के राजा, जहां भगवान कृष्ण भी गए थे उनसे मिलने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए। है? 30? हाँ, 30 साल, 18 और 12, 30। तो 30 वर्ष की सीता जी थी और भगवान राम की अवस्था कितनी थी? 39, है ना। आप 9 जोड़ दिए सीता जी की अवस्था में, 9 वर्ष जोड़ दें तो राम की अवस्था जाएगी, है ना। 39 वर्ष के थे जिस समय शूर्पणखा पंचवटी में आई थी उस समय। फिर सीता जी का जन्म और राम जी का जन्म एक ही तिथि है। आप जानते कौन सी तिथि है? सीता के नौमी। सीता जी सीता नौमी और राम नौमी होता है। जैसे कि राधा और कृष्ण दोनों का जन्म एक ही तिथि में होता है, अष्टमी। कृष्णाष्टमी और राधाष्टमी, लेकिन थोड़ा अंतर है। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है कृष्ण अष्टमी, है ना, और राधा रानी का जन्म हुआ है शुक्ल अष्टमी। महीना एक ही है, भाद्रपद। भाद्रपद के महीने की कृष्ण अष्टमी को भगवान कृष्ण का जन्म है और शुक्ल अष्टमी को राधा रानी का जन्म है। महीना एक ही है, लेकिन सीता राम के जन्म में जो है पक्ष वही है लेकिन महीना बदलता है। भगवान राम का जन्म होता है चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को और सीता जी का जन्म होता है वैशाख शुक्ल नवमी। शुक्ल पक्ष है दोनों का, लेकिन महीना जो है ना अलग है, ये अंतर है। इसके बाद फिर एक और चर्चा हम कर सकते हैं। भगवान कृष्ण के समय में जो सत्यभामा थी तो सबसे ज्यादा माननी थी। आप इतने पागल हुए कि पशु पक्षी वृक्ष लताओं सबसे पूछते फिरते थे, आप इतने पागल हो गए, तो क्या सीता मेरे से ज्यादा सुंदर थी? सत्यभामा पूछते हैं है? कि क्या सीता मेरे से ज्यादा सुंदर थी कि आप सीता का पता पूछते हो तो पशु पक्षी वृक्ष लताएं सबसे पूछते हो, आप इतने पागल हो गए सीता के लिए। तो भगवान कृष्ण जो है, भगवान तो सबका अपमान दूर कर रहे हैं, तो भगवान कहते हैं कि देखो अगर मैं कहूंगा तो तुम विश्वास नहीं करोगी। तो ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाए जो समय था हाँ और अभी भी है ना, तो उस व्यक्ति को बुलाया जाए। ठीक है, हनुमान जी को बुलाओ। हनुमान जी को मैं बुलाता हूं तो तुम सीता का रूप धारण कर लो, मैं राम का रूप धारण कर लेता हूं। और हनुमान जी को बुलाते हैं, वो दर्शन करेंगे तो फिर पता चलेगा। तो हनुमान जी कदली वन में निवास करते हैं, तो गरुड़ जी को भेजा गया हनुमान जी को बुला लाओ। तो हनुमान जी जब गरुड़ जी कहते हैं कि आपको द्वारका में भगवान कृष्ण ने बुलाया है, तो हनुमान जी कहते हैं मैं तो कृष्ण को नहीं जानता, तो गरुड़ जी को बड़ा गुस्सा आया, कैसे बोलता है कि मैं कृष्ण को नहीं जानता। तो द्वारका में आकर के कहते हैं प्रभु, वो तो ऐसे जवाब देता है कि मैं कृष्ण को नहीं जानता। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, उनको बोलो कि तुमको राम जी ने बुलाया, द्वारका में राम जी हैं बुलाया। तो फिर गरुड़ जी गए, फिर कहते हैं अच्छा द्वारका में आपको राम जी बुला रहे हैं, अच्छा राम जी बुला रहे हैं, ठीक है चलो आता हूँ। हनुमान जी कहते हैं चलो आता हूँ। तो गरुड़ जी को फिर बड़ा बुरा लगा, ऐसे कहता है चलो आता हूँ जैसे मेरे से ज्यादा, हाँ क्या मेरे से जल्दी आ जाएगा क्या। तो गरुड़ जी जब पहुंचे वहां तो देखा हनुमान जी पहले ही पहुंच गए, वो पहले ही गरुड़ जी से पहले ही पहुंच गए। अब यहां हनुमान जी जब पहुंचे तो भगवान राम का जब दर्शन किया तो बहुत प्रसन्न हुए और प्रणाम किया, नमस्कार किया, स्तुति प्रार्थना सब करी। और बाद में क्या कहते हैं हनुमान जी कहते हैं, क्योंकि उनके साथ में जो सत्यभामा थी तो उनको देख करके वो प्रसन्न नहीं हुए, हनुमान जी प्रसन्न नहीं हुए और क्या कहते हैं कि प्रभु आप जैसे पहले थे वैसे ही आप अभी भी हैं, वही महिमा है, वही रूप है, वही सब कुछ है, लेकिन माता के स्थान पर आपने किस दासी को बिठा लिया। तब सत्य मामा का जो है अभिमान दूर हुआ, क्योंकि सीता जी का जो रूप है, सौंदर्य है, इसकी कोई तुलना ही नहीं है। और वाल्मीकि मुनि जैसा वर्णन करते हैं रामायण में, बहुत ही अद्भुत सीता जी के रूप का वर्णन करते हैं, तो इस तरह से सत्यभामा का आसमान दूर हुआ। फिर एक और भी बात जो है मैंने कहीं पढ़ी है, वो हरिभक्ति विलास में पढ़ी है, एकादशी के महात्म्य ऐसा लिखा हुआ है कि सीता जी ने एक बार वाल्मीकि मुनि से प्रश्न किया। आप जानते हैं कि वाल्मीकि आश्रम में सीता जी रही जब राम ने त्यागा था, तो वाल्मीकि जी से सीता जी ने प्रश्न किया कि इस जन्म में तो मेरा कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं है, लेकिन पिछले जन्म में या किस जन्म में मेरा ऐसा कुछ बुरा कर्म हुआ जिस कारण से मुझे बार बार अपने पति का वियोग मिल रहा है। तो आप जानते हैं रावण ने हरण किया सीता का, है ना, तो राम के वियोग में बहुत कष्ट पाई और फिर बाद में सीता का त्याग किया राम ने। तो सीता जी कहती हैं कि मेरा मेरे किस जन्म का ये ऐसा कुछ कर्म है और कौन सा कर्म है जिस कारण से मुझे बार बार पति से वियोग प्राप्त हो रहा है। तो वाल्मीकि जी ने अपने दिव्य दृष्टि से जब देखा सीता जी के जन्मों को, तो वो बताते हैं कि तुम्हारा पिछले से पिछले जन्म में एक ऐसा भूल हुई है कि जिस कारण से ये कष्ट मिल रहा है आपको। तो वाल्मीकि जी बताते हैं कि आपने चूंकि एक बार गलती से दसवीं तिथि को ही एकादशी का व्रत किया, इस कारण से ये दोष है। भूल से भी अगर दसवीं तिथि को अगर एकादशी का व्रत किया जाए तो उसमें बड़ा दोष होता है। कभी कभी दो एकादशियां पड़ती हैं, जो पहली एकादशी होती है उसमें दसवीं तिथि मिली होती है, तो दसवीं तिथि थोड़ी सी भी अगर मिली हो, एक पल का भी अगर भेद होता है, तो उसको त्याग देना चाहिए। हरिभक्ति विलास में ये कहा गया है कि उस एकादशी को त्याग देना चाहिए, दसवीं तिथि का एक पल का भी अगर मिश्रण हो तो उसी प्रकार से त्याग देना चाहिए उस एकादशी को, जैसे कि एक कलश गंगा जल का है और उसमें एक बूंद भी अगर शराब मिली हो तो वो अशुद्ध है। आप समझ रहे हैं, उसी प्रकार से एकादशी वो अशुद्ध होती है, क्योंकि दसवीं तिथि असुरों की होती है और उस तिथि को अगर एकादशी व्रत किया जाए तो असुरों की शक्ति बढ़ती है, तो उसमें बड़ा दोष होता है। इसलिए वैष्णव एकादशी है ना जो होती है, वो कौन सी होती है, अगली होती है, अगले दिन होती है, जो जिसमें द्वादशी तिथि मिली है तो वो अच्छी है, द्वादशी तिथि भगवान विष्णु की है, दसवीं तिथि असुरों की होती है और एकादशी होती है ऋषियों की और द्वादशी होती है भगवान विष्णु की। तो भाई द्वादशी अगर मिली हो एकादशी को तो वो बड़ी पवित्र होती है, लेकिन दसवीं तिथि अगर जरा से भी मिली हो तो वो अशुद्ध हो जाती है, वो हर प्रकार से उसका त्याग कर देना चाहिए। तो इस उपलक्ष्य में सीता जी को जो है वाल्मीकि जी ने यह बताया। इसके बाद सीता हरण की घटना और रुक्मिणी हरण की घटना भी हाँ, तुलना की जा सकती है। रुक्मिणी का जो हरण हुआ है, भगवान कृष्ण ने किया रुक्मिणी जी का हरण है, उस समय रुक्मिणी जी का वह किसके साथ होना था? शिशुपाल के साथ। और शिशुपाल कौन है? पिछले जन्म का रावण है। रुक्मिणी पिछले जन्म की कौन है? सीता है। रुक्मिणी के पिता जो भीष्मक थे, ये पिछले जन्म के कौन है? जनक जी हैं। सीता के पिता जनक जी हैं, है ना। रुक्मिणी जी थी कुंडलपुर में, और विवाह हो रहा था रावण के साथ। इस बार आप समझ रहे, सीता का विवाह रावण के साथ हो रहा था। कौन कर रहा था? कोई नहीं चाहता था। कुंडलपुर के जितने निवासी थे, कोई नहीं चाहते थे है? कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ हो है? कौन चाहता सीता का विवाह रावण के साथ हो? कौन चाहता है? उनके पिता भीष्मक भी नहीं चाहते थे है? और रुक्मिणी के जितने भाई थे वो भी नहीं चाहते थे। एक सबसे बड़ा भाई था रुक्मी, वो बड़ा दुष्ट था है? तो उसके जो ना मतलब वो उसको क्या करते हैं, मतलब दुराग्रह, उसका ही दुराग्रह था। और उसका ही उसके कारण जो है ना, मतलब उनके पिता हैं, उनके छोटे भाई हैं, सब जो है दबे हुए थे उस कारण से। उसने अपना प्रभाव सबके ऊपर डाला हुआ था। कुंडलपुर की जो प्रजा थी, वो भी भगवान से प्रार्थना करे, भगवान से मनाए कि हमारे जितने भी पुण्य हो, जितने भी हमारे पुण्य हो, वो अगर कुछ भी पुण्य हो तो उनका यही फल हो कि कृष्ण किसी प्रकार से रुक्मिणी का हरण करके ले जाएं, और किसी प्रकार से भी शिशुपाल के साथ विवाह ना हो रुक्मिणी जी का। और रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा कृष्ण को है? कि किसी भी प्रकार से अगर मुझे आपके चरणों की प्राप्ति नहीं हुई है? तो मैं जहर खा करके प्राण त्याग दूंगी, और चाहे कितने जन्मों के बाद भी हो, इन आपके ही चरणों को मुझे प्राप्त करना है। रुक्मिणी जी ने अपना फैसला भेज दिया था द्वारका में। तो भगवान कृष्ण जब आए तो रुक्मिणी का हरण किया है ना। तो सीता का हरण तो यहां भी हुआ, वहां भी हुआ, लेकिन यहां पर राम ने सीता का हरण किया। रावण से छीन करके राम सीता का हरण करके करते हैं यहां पर, जबकि पहले क्या था कि रावण ने सीता का हरण किया था, है ना, राम से। तो ये उसका बदला है, उसकी क्या बदला है। ये हर प्रकार से सीता जो है ना राम की ही होती है, राम से अलग नहीं होती है सीता जी किसी प्रकार से। तो फिर एक घटना है सिंदूर की, हनुमान जी के साथ हुई जो, तो वो भी आप लोग जानते होंगे। तो जब भगवान राम सीता को लेकर के अयोध्या आए तो सब वानरों को विदा कर दिया, लेकिन कुछ शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी अयोध्या में ही रहे। तो हनुमान जी अयोध्या में थे, तो सेवा में थे, सीताराम की सेवा में थे। तो एक बार हनुमान जी जो है सीता जी को देखते हैं कि वो सिंदूर लगा रही हैं, तो एक नादान बालक के समान हनुमान जी पूछते हैं कि माता ये आप क्यों लगाती है अपने बालों में। आप सीता जी क्या उत्तर दें, ये तो बंदर है, इसको क्या बताऊं। एक सुहागिन स्त्री का ये चिन्ह है, तो सीता जी क्या बताएं उस बंदर को। तो उन्होंने कहा कि पुत्र, ये सिंदूर जो मैं लगाती हूं तुम्हारे स्वामी को बहुत पसंद है, तुम्हारे स्वामी इसको देख के प्रसन्न होते हैं। तो ये बताया सीता जी ने। तो आप इतना तो इतने ही समझ में आया हनुमान जी को कि मेरे स्वामी बहुत प्रसन्न होते हैं। अच्छा, स्वामी जी प्रसन्न होते हैं। जब सीता जी चली गई तो उस कमरे में हनुमान जी रह गए अकेले। तो उनको मौका मिला तो पूरा का पूरा सिंदूर उन्होंने लेकर के अपने पूरे शरीर में लगा लिया है कि अगर स्वामी प्रसन्न होते हैं तो पूरा का है। हाँ, तो पूरे शरीर में सिंदूर लगा करके कि मेरे स्वामी प्रसन्न होते हैं है? तो वो जो है राम के दरबार में आए। राम के दरबार में जब आए तो सब जो सभासद लोग थे वो हंसे कि देखो आज बंदर है? कैसा अपना बेस बना करके आया है। हनुमान जी को चिंता नहीं, वो राम को प्रसन्न करना चाहते हैं, बाकी लोग कितना भी हंसे हैं उन्हें चिंता नहीं है। तो भगवान राम पूछते हैं, हनुमान ये तुमने क्या किया आज, पूरे शरीर में ये सिंदूर क्यों लगाया। तो हनुमान पूछते हैं, कहते हैं कि प्रभु मैंने आज माता से पूछा कि वो अपने बालों में सिंदूर क्यों लगाती हैं? तो उन्होंने बताया कि मेरे स्वामी प्रसन्न होते हैं इसको देख करके, इसलिए आपको प्रसन्न करने के लिए मैंने पूरा शरीर में सिंदूर लगाया है। तो भगवान राम कहते हैं कि हाँ हनुमान, मैं सच में बहुत प्रसन्न हूं तुम्हें देख करके। और अब मैं वरदान देता हूं तुम्हें कि आज के दिन, यानी वो शनिवार का दिन था, कि आज के दिन जो है जो लोग तुम्हें सिंदूर अर्पित करेंगे उनकी सब मनोकामनाएं मैं पूरी करूंगा। भगवान राम ने हनुमान जी को वरदान दिया। तो ये घटना है सिंदूर की। इसके बाद फिर यज्ञ सीता की एक घटना मैं बताना चाहूंगा, समय तो ज्यादा नहीं है। जब भगवान राम ने सीता का त्याग कर दिया, तो चूंकि एक पत्नी व्रत धारण करते थे भगवान राम, तो दूसरा विवाह नहीं किया। लेकिन जितने अश्वमेध यज्ञ हुए, और हजारों भगवान अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो प्रत्येक अश्वमेध यज्ञ में एक सोने की सीता नई बनाई जाती थी, भगवान राम के वाम भाग में रखी जाती थी सोने की सीता। इस प्रकार से हजारों सोने की सीताएं भगवान राम के महल में एकत्रित हो गईं। एक बार जब भगवान राम उस महल में प्रवेश करते हैं, तो उनकी दृष्टि से वे सब जिंदा हो गईं, सब जीवित हो गईं। तो भगवान राम से कहते हैं कि हम तुम्हारी पत्नियां हैं, पर हमें स्वीकार करो पत्नी के रूप में। अगर आप नहीं स्वीकार करोगे तो आपको अधर्म लगेगा, क्योंकि आपने हमें यज्ञ में बाएं स्थान में बिठाया। तो भगवान राम कहते हैं कि तुम्हारा कहना सर्वदा उचित है, लेकिन चूंकि मैं राजर्षि के नाम से जाना जाता हूं, एक पत्नी व्रत धारण करता हूं, इसलिए अभी तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा आगे द्वापर युग में, जब मैं कृष्ण के रूप में प्रकट होऊंगा। तो तुम उस समय जो है ना, यज्ञ सीता गोपियां ये अलग हैं, जो कि शायद उपनंदों के घर में उत्पन्न हुई थी। तो ये जो है राधा रानी के पास जाती हैं, भगवान कृष्ण को देख करके जब आकर्षित होती हैं, तो कृष्ण को जो है ना पति रूप में प्राप्त करने के लिए राधा रानी से पूछते हैं कि कोई ऐसा व्रत बताओ जिससे कि हमें कृष्ण पति रूप में प्राप्त हों। तो राधा रानी उनको एकादशी का व्रत बताती हैं। तो वो एक साल तक एकादशी का व्रत करती हैं, जिससे कि उन्हें कृष्ण की प्राप्ति होती है। तो ये यज्ञ सीता है। इसके बाद फिर सीता का त्याग भगवान राम ने क्यों किया, इस पर काफी प्रश्न उठाए जाते हैं। और वाल्मीकि रामायण में भी लक्ष्मण जी ने भी प्रश्न उठाया कि इससे कौन सा धर्म हुआ भगवान राम को। तो सुमंत्र जी जो है लक्ष्मण जी को बताते हैं एक रहस्य, एक ही कारण है, और कोई कारण नहीं है। और वो कारण क्या है? भृगु मुनि का श्राप। भृगु मुनि ने श्राप दिया था भगवान विष्णु को, इस कारण से उन्होंने भगवान राम में सीता का त्याग किया। भृगु मुनि की पत्नी थी ख्याति, जिसने अपने घर में असुरों को आश्रय दिया था, और असुरों को आश्रय देने के कारण, यद्यपि स्त्री अवध होती है, लेकिन असुरों को आश्रय दिया, इस कारण से भगवान ने उस उनकी स्त्री का सिर अपने चक्र से काट दिया। भगवान के द्वारा कोई धर्म नहीं होता, कभी धर्म नहीं होता, भृगु मुनि जानते थे। लेकिन तो भी अपने पत्नी के वियोग में और बहुत गुस्सा होने के कारण उन्होंने श्राप दिया भगवान को कि आपको ही अपनी पत्नी का वियोग सहन करना पड़ेगा। तो फिर वो भृगु मुनि जानते थे कि भगवान को श्राप देने से क्या परिणाम होता है, अपनी ही तपस्या नष्ट होती है और भगवान को श्राप नहीं लग सकता। तो फिर भृगु मुनि ने तपस्या की भगवान को प्रसन्न करने के लिए। भगवान जब प्रसन्न हुए तो उनसे कहा कि वर मांगो। तो भृगु मुनि ने कहा कि आप मेरे श्राप को स्वीकार कीजिए, क्योंकि एक ब्राह्मण को यह चिंता होती है कि उसके मुख का जो निकला हुआ वचन है वो असत्य ना हो। तो भृगु मुनि चूंकि श्रेष्ठ ब्राह्मण है, इसलिए उनको यह चिंता थी, इसलिए उन्होंने भगवान से ही वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? कि मेरे श्राप को आप स्वीकार कीजिए। तो भगवान कहते हैं ठीक है, मैं संसार के कल्याण के लिए तुम्हारे श्राप को स्वीकार करूंगा। इस प्रकार से भगवान सीता जी का त्याग करते हैं। तो और भी कुछ बातें हैं, लेकिन अब चूंकि समय हो चुका है, तो मैं चाहूंगा कि कुछ कोई प्रश्न हो किसी का, किसी की समीक्षा हो, तो आप लोग कुछ करें। हाँ आप बोल, सुनाई नहीं पड़ा? हाँ, भृगु मुनि की पत्नी ने असुरों को आश्रय दिया था किस लिए? कभी कभी हम लोग भी ऐसी गलती करते हैं, दया के नाम पर जो है आश्रय देते हैं असुरों को, और इसको दया माना जाता है कि हाँ हम बहुत दया कर रहे हैं, है ना। तो इस मामले में जो है ना कई लोग भ्रमित हैं इस मामले में कि हम दया कर रहे हैं, हम दया कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में दया नहीं है। ये जो है असुरों को आश्रय देने का मतलब है असुर, जो असुर है वही असुरों को आश्रय देते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। लेकिन कभी कभी ये भूल होती है इस तरह से। हाँ आपका प्रश्न है, छाया सीता के बारे में बता दूं? अच्छा ठीक है, आखिरी प्रश्न है। छाया सीता जो है ये जो कथा है ये कुर्म पुराण में है। एक बार एक ब्राह्मण था जो कि बड़ा दुखी हो रहा था, चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा में गए तो बड़ा दुखी हो रहा था, और वो इसी बात पर दुखी था, उद्विग्न था बहुत ज्यादा कि कैसे जगत माता जो सीता है उस दुष्ट रावण ने हरण कैसे किया, कैसे स्पर्श किया, इस बात को देख के इतना उद्विग्न था लेकर के कि ऐसा, और वाल्मीकि रामायण में तो नहीं है ये रहस्य। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नहीं नहीं, उसने असली सीता का हरण नहीं किया था, छाया सीता का हरण किया था, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हो रहा था क्योंकि वो प्रमाण नहीं मिल रहा था। तो भगवान चैतन्य जब एक स्थान पर गए थोड़ा आगे तो कुर्म पुराण की कथा हो रही थी, उसी समय वो कथा आई कि भगवान राम जो है जब लक्ष्मण जी गए थे जंगल में समिधा लेने या जो भी लेने, तो भगवान राम ने सीता को जो है ये कहा कि देखो देवी, रावण तुम्हारा हरण करने के लिए आ रहा है, लेकिन रावण तुम्हारा हरण क्या या तुम्हें छूने की बात क्या, तुम्हें देख भी नहीं सकता गलत दृष्टि से, वो भस्म हो जाएगा तुम्हारी पवित्रता से, लेकिन मुझे लीला करनी है, इसलिए अब मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम जो है छिप जाओ। तो अग्निदेव को प्रकट करके और सीता को जो है ना अग्निदेव ने अपने लोक में भेज दिया, और सीता की छाया से जो है ना एक दूसरी सीता उत्पन्न की। तो अग्नि में समा गई सीता जी, अग्निलोक में चली गई, और अग्निदेव ने सीता की छाया से एक सीता उत्पन्न की जो राम के साथ बैठी। लक्ष्मण जी को इस रहस्य का पता नहीं था। तो जब रावण ने हरण किया तो वो छाया थी, सीता की छाया थी। जब बाद में रावण का वध करके सीता जी को जब बुलाया गया, वो छाया सीता को बुलाया गया, तो सबके सामने भगवान राम ने कुछ आक्षेप किया सीता जी पर, और सीता जी ने फिर लक्ष्मण को आदेश दिया कि अब मुझे अग्नि में प्रवेश करना है। तो लक्ष्मण जी को ये रहस्य पता नहीं था। लक्ष्मण जी बड़े दुखी हृदय से अग्नि जलाते हैं, और वो छाया सीता जो है अग्नि में प्रवेश कर जाती है, और असली सीता है वो अग्नि से निकल आती है। तो ये रहस्य किसी को पता नहीं था। लेकिन फिर वो क्या हुआ कि अग्निदेव ने उस छाया सीता को दूर जंगल में छोड़ा, दूर जंगल में छोड़ करके वो जो है ना जो छाया सीता थी वो निर्जन थी, अकेली थी, तो वो फिर तपस्या करती है और शंकर जी को प्रसन्न करती है। शंकर जी वर देने के लिए आते हैं तो शंकर जी से वो पति मांगती है, तो वो पांच बार पति मांगती है, पतिम देही पतिम देही पतिम देही पतिम देही, पांच बार पति मांगती है, है? तो इस कारण से शंकर जी चूंकि हंसते हैं, विनोदी स्वभाव के हैं, तो वो हंस करके कहते हैं ठीक है तुझे पांच पति प्राप्त होंगे। तो वही छाया सीता अगले जन्म में द्रौपदी बनती है, है ना। तो वही द्रौपदी ही थी पिछले जन्म में जिस कारण से बहुत बड़ा युद्ध हुआ था राक्षसों में और मानवों के बीच में, जिसके कारण, और वही द्रौपदी जो हुई द्वापर युग में उसके कारण ही बहुत बड़ा युद्ध हुआ महाभारत का, तो वही युद्ध का कारण बनी। ठीक है, धन्यवाद। श्रीमती सीता महारानी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, धन्यवाद।
कृष्ण हरे हरे।